और यदि कोई आता कि क्यों करीब हो तो सुन करके उसका हृदय एकदम आनंद से उत्फलित हो जाएगा। क्या राधा, इसलिए अपने जो प्रिय नाम है सब प्रिय नाम अपना प्रिय नाम विशेष करके उन्होंने उत्तराखंड में जो साधन का जो सोपान दिख रहा है जिन स्तरों को वो पार करके गए हैं उसमें 11 श्रेणियां दिख रही है। 11 क्या? पहले देखो, सबसे पहले ये भक्ति की जो वृत्ति है बिना महत् कृपा का कुछ नहीं होगा, इसलिए महत् कृपा जो है ये पहली श्रेणी है। आज पर्यंत बिना महत् कृपा है कोनो कोने भक्ति न है, भक्ति राय दूर संसार में संसार ही नहीं होगा, भक्ति तो बहुत दूर की बात जब तक की महत् कृपा है। महत् कृपा को पाने के लिए हमको जैसे यज्ञ होता है ना, यज्ञ की एक हमको अपने को आहुति देनी पड़ेगी, मैं की आहुति उसे यज्ञ में देना पड़ेगा, अर्थात अब मैं तुम्हारा हो गया अनेक वो कुछ नहीं देंगे, महत् कृपा कुछ नहीं करेंगे, कृपा करने के लिए तो बाकी है किंतु देने की पात्रता नहीं है, इसलिए महत् कृपा पहली वो भी अहेतुकी महत् कृपा पहली। दूसरा महतों की सेवा, अपनी अपना स्वार्थ पूर्ण करके संपूर्ण रूप से ऐसे महान पुरुष जो है भक्तिमान रसिक है महान कृपालु है ऐसे महापुरुषों की सेवा अनकंडीशनल सर्विस। जैसे लोकनाथ गोस्वामी की सेवा हमारे नरोत्तम ठाकुर जी ने महत्व की सेवा, गुरु जी सबसे प्रसन्न होते हैं कब, जब ही कोई उनकी बातों को सुनकर के गदगद हो जाए, बात बहुत सुंदर बात आ जाए उपलब्धि करके, इससे बढ़कर के और कोई प्रसन्न किसी बात से नहीं, जब उनके वचनों को कोई सुनकर और गदगद हो जाए प्रेम में आतुर हो जाए तो उसे सबसे बड़ी प्रसन्न मिलता है और उसको सर्वस्व दे देते हैं। इसके बाद में तीसरा है दीक्षा, दीक्षा मैंने दिव्य ज्ञान, ये दीक्षा गोप कुमार को उनके गुरु जयंत ने दी, गोपाल मंत्र के लिए। इसके बाद में उसी गुरु के दिव्य मंत्र का खूब श्रद्धा के साथ में जप, और जो नाम दिया है उसका कीर्तन, दोनों शास्त्रार्थ है जप और दीक्षा के अंतर्गत हुआ। ये मंत्र जप है, ये क्या है, ये भजन की क्रिया है, किसी को पढ़ते हैं भजन की मंत्र जप, मंत्र जप के समय में ऊंघने लगे आलस आने लगे और ये काम करना है जल्दी से इसको काटो, झट एक मिनट में आरती कर दी अर्चन कर दिया और ठाकुर जी के सामने प्रसाद भोग बढ़ा दिया और बस अभी जाना है, हमारे स्वामी आएंगे अभी सर्विस में, उनके लिए जल्दी से करो, बच्चे स्कूल जाएंगे जल्दी से करो। हम लोग यहाँ कितने प्रकार के कार्य जिस काम के लिए हैं वो काम करें, सत्संग सत्संग हुआ ये पांचवा, बिना सत्संग माने क्या, गदाधि प्रतिक्रन्नापि गुह्यं मा ख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोज्यते चैव सर्वविधं इति लक्षणं, सम्यक् रूपेण गमनम् अनुगमनम्, जैसे संत चल रहे हैं वैसे ठीक विचारों पर चल, विचारों पर मानते नहीं है, गुरु जी ने कहा देखो भांग मत खाना, अरे प्राण जाए और भांग न जाए, बस तो हो गया, झूठ मत बोलना, प्राण जाए और झूठ न जाए, अपने पंडितियों को नहीं छोड़ेंगे उनके अनुसार में तो कैसे होगा। इसलिए वो मंत्र काम नहीं करेगा। इसलिए भजन क्रिया में सत्संग होना चाहिए। बीच में वैष्णव लोग संत लोग इंजेक्शन देंगे जिसमें हम लोगों ने सामर्थ है उसको पालन करने के लिए। बिन सत्संग न पाम अभिप्राणी, बिना सत्संग के भक्ति नहीं होगी भाई। भक्ति रही नहीं भी यदि सत्संग बंद हो जाए भाई, पहले हमारा यह काम हो जाएगा, शाम को हम कोई काम करते। पहले हमारी मिठाई जो बनी है उसको बिक्री हो जाएगी तब जाएंगे बस। हमारा यह काम हो जाएगा तब हम जाएंगे। अरे दो चार आदमी आ गए उनसे बातचीत करने में लग गया, इसलिए आज तो वचन साधु संत में नहीं था। तो उन्हीं लोगों में अधिक बुद्धि रही, ऐसे भक्ति नहीं होती, इंसान नहीं है भक्ति जितना हम समझते हैं। खूब अच्छी तरह से प्रगाढ़ निष्ठा होनी चाहिए इन सब विषयों में। जैसे गोप कुमार का था ऐसा ही दृढ़ता होगी सत्संग। सत्संग माने ये नहीं बड़े मस्त से हमारे मित्र आ गए साधु भाई क्यों नहीं आए, वो ऐसे काम में लग गया। और जितनी बातें थी जब तक के नहीं मिले थे, जो बातें जो नहीं दी हुई बस रस में चलने लगे उसी बातों के रस। ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया और हमने ऐसा कर दिया, बस यही बातें होती रही संसारी बात। ये साधु सत्संग हमारे कृष्ण की कथाएं हो रही है, हमारी त्रुटियां कहां है ये सब को देख करके साधु संत श्रद्धापूर्वक इसके बाद में श्री विग्रह का दर्शन देख करके क्षण क्षण में रोमांचित पूर्तित और नई नई भावना राधा जी को देखा, कृष्ण को देखा, महाप्रभु देखा, कैसी कैसी भावनाएं हृदय में आने लगी, उनके आंखों से करुणा की वर्षा हो रही है, उनके मुखारविंद पर कैसी सुंदर स्मृति मुस्कान है, मानो अपना सब कुछ देने के लिए वो तैयार, नई नई भावनाएं बड़ी करुणा से हमारे तरफ ने देखा। महाप्रभु जी जहां देखा जगन्नाथ को पागल हो जाते थे, पागल का मन मूर्छित हो जाते, ऐसे इन दृष्टियों से श्री विग्रह की तरफ ने देखा। इसलिए हम लोग ठाकुर जी को सामने से प्रणाम नहीं करते, हम दृष्टा नहीं है, दृष्टा वो है, बारीकी से हम देखना उनकी करुणा को जाए, बारीकी से क्या देखेगा, क्या देखेंगे कौन सी सवार इसमें है ना, कहां की क्या देखेंगे, बारीक बड़े देख रहे हैं, बड़ी हमने कहा भाई क्या देख रहे हैं, मैं तो आज थोड़ी देर खराब ये सब किया मैं कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर बाद थोड़ी सी हवा की थोड़ी सी कमी यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा कमल जैसा लाल होने ये सब मत देख रहे इनको साक्षात कृष्ण के रूप में देख रहे और नहीं देखते हो तो उनसे प्रार्थना करके बोलते। इसलिए हम लोग लंबा ठाकुर जी के सामने अपना बायां भाव रख करके और प्रणाम करते हैं जो उनकी कृपा की दृष्टि है। श्री विग्रह और भक्ति ये सब तबोक में पहुंच गए। श्री विग्रह और भक्ति के भेद विषय बीच पीछा अतत मध्यवर्ती का आने लग गया। अभी तक कनिष्ठ अधिकार केवल श्री विग्रह तो अतिरिक्त और वैष्णव में उतना भाव नहीं, आप वो अब विग्रह में और संतों में क्या वैशिष्ट है दिशा में भक्ति किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, ना? इसके बाद में आत्मवाद स्वरूप की अनुभूति, संसार के जितने अनर्थ थे वे दूर हो गए और मेरा स्वरूप क्या है इसकी स्फूर्ति। देखो इतने स्तर के बाद में आया है स्वरूप की अनुभूति, जिसको बाबा जी लोग एक दिन में कहते तुम है भूपी, तुम्हारा स्वरूप भूपी का है ना? गौड़ीय वैष्णव में ये आज तक के जो 90 सन्यासी और लाल कपड़े वाले हैं वो रहते ही नहीं है, वो भूपी जानते ही नहीं, वो केवल आम की गुठली को चूसते हैं और रस तो उनके पाल पल्ले कुछ नहीं पड़ता। ये कहां इतने दूर के बाद में तब स्वरूप की उपलब्धि, स्वरूप की उपलब्धि बताया हो ये करने के बाद में गुरु जी निर्देश देंगे और उसका स्वरूप उद्घाटित होगा, स्वरूप की अनुभूति। किसी को मुक्ति पर करते हैं अपना ब्रह्मानुभूति अपना शांत शांत होगा, ये स्वरूप यहीं से आरंभ होगा। नौ अप्रेमा भक्ति चला यहां से स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई, मैं गोपी हूं और मेरी सेवा क्या है, तांबूल सेवा या कर्पूर सेवा, मेरी सेवा है कहा बात है तारावली विश्वभारतपुर में जन्म हो गया, विश्वभारतपुर में जन्म हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, रत्न भी नहीं गए, कुछ भी नहीं हुआ, विश्वभारतपुर में जाओ में विवाह हो गया, वहां पर रख करके और इतना सब ऐसे कह करके निर्बुद लोगों को बाबा जी लोग दीक्षा को करते हैं और हम लोगों से कुछ लोग समझते नहीं। अपना पर भक्ति होने पर नवे में भगवान नाम का स्वरूप से दर्शन होगा, स्वरूप से हरि कथा का श्रवण होगा और भगवान की रूप रूप गुण लीला का वर्णन होगा। वो लोग कहेंगे बाबा जी लोग गौड़ीय मठों में कान में भीतर में मंत्र नहीं देते, वो दूर से कह देते, ऐसा मंत्र होना चाहिए शासक को बुला चाहे स्त्री हो पुरुष और चुपचाप उनके कान में फूम आएगा ना? इसको कहेंगे ये आप दीक्षा हुई है, जब तक ये कान में फूम नहीं आ रहा हाँ इसको कहते हैं कान फूम आ रहा बदमाशी की जरूरत होती है, वो आप लोगों को कहा जाएगी कान को फुकवाया तो नहीं तो कान को फुकवाएंगे तो गुरु जी कान को फूकते हैं। अरे ये जड़ कानों से जड़ आंखों से भगवान नाम का भक्ति का प्रेमा भक्ति का क्या प्रयोजन संबंध है, ये कारण कहते ही व्यक्ति ने हमको सब किया हमको बड़ा थोड़ा सा अब देखो कहते अब कुछ क्रोध आ गया। ये सब चीजें ऐसी नहीं है। अरे गोप कुमार को उनके गुरु जी ने कान फूका है, सनातन गोस्वामी का रूप गोस्वामी का कान कौन फूका, इन बाबा जी ने ना किसने फूक दिया। ये जगत के जलजाल है ये बाबा जो ऐसा करते हैं, इसलिए कभी भी उनके खप्पर में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारा यह कान यह फूल और यह फूल दो फूल को आई यहाँ पर गाँव में भगवान नाम कीर्तन उनका नाम रूप गुण सुनना यही दीक्षा है यथार्थ। और वहां पर किंतु गौरव मिश्रा भक्ति होगी, गौरव मिश्रा कृष्ण बड़े हैं हमारे श्री विग्रह बड़े हैं हम छोटे हैं ऐसा गौरव भाव है, वो सारे सज्जशाली हैं हम दिन ही छोटे तुच्छ हैं ऐसे गौरव भाव आएगा। उसके बाद में ऐश्वर्य माधुर्य की अनुभूति, जैसे द्वारका में गए अयोध्या में गए बैकुंठ के ऊपर में जब जाते हैं तो अयोध्या में गौरव मिश्र द्वारका में भी अब गौरव के तो माधुर्य कुछ आने लग गया और ऊपर में गए हैं तो एकदम महाप्रभु जी की अनुभूति उन्होंने की है। वहीं पर भगवत प्रेम और भगवत प्रेम में ही भगवान का दर्शन भाव अवस्था में कहीं एक झलक मिल जाए, बस थोड़ी सी झलक मिली जिसके बाद नहीं उसकी उत्कंठा बढ़ी। बिना उत्कंठा प्रारंभ से उत्कंठा यदि किसी की नहीं होगी तो एक चूल भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उत्कंठा कब मिलेगी, कब मिलेंगे, कैसे मिले, और उसके लिए सर्वस्व प्यार की भावना बनी रहेगी और कोई कामना वासना हृदय में ना ले पाए, ये बहुत विशेष रूप से देखना है। फिर उसमें सेवा रस की प्रतिष्ठा हो, सेवा की में रस भावना है, अतः अत्यंत प्रतियोगी सेवा करने में। अयोध्या में सेवा रस की विशेष निष्ठा है किंतु ऐश्वर्य भाव उसमें मिला हुआ है। अब दशम में चलिए द्वारका, द्वारका में सौभाग्य रस निष्ठा। सौभाग्य में कृष्ण मेरे पिताजी हैं, कृष्ण की मैं सेविका हूं, रुक्मिणी सत्ता माता पापा भाई हैं मेरे, सखा हैं मेरे, सब कुछ वो स्वभाव। इस तरह से मिल पाते भगवत के बारे में विशुद्ध परम प्रेम में दर्शन की उत्कंठा वहां पर लगी रहती है। दर्शन सख्य नर्म भाव भी वहीं से प्रारंभ होता है किंतु पूर्ण रूप में नहीं। नर्म भाव है परिभाष युक्त। अब ग्यारह में चलिए सत प्रेम मदे भी करुणा वृंदावन में पहुंच जाए। सत प्रेम मद में गुरु में प्रेम रस निष्ठा है, शुद्ध माधुर्य शुद्ध प्रीति है। इसमें भी सखा से आरंभ करो, सखा के ऊपर में चलो बात कर लेने और उसके बाद ही मधुर भाव। मधुर भाव भी वृंदावन में दो प्रकार के माने गए, एक स्वकीय का कुछ कुछ गंध लेकर के उन गोप कुमारी में है जिन्होंने कात्यायनी की पूजा की, उनमें ब्रज का भाव तो है कि कुछ स्वकीया का गंध होने से कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सकी। वो विरहति प्रताप भूता सुहा, जब ऐसा हुआ विरह के ताप में जब के पति ने उनको घर में बंद कर दिए, उनको जिनके अंदर में कुछ स्वकीय का गंध था, फिर वो विरह ताप उसे उनका मनोभाव जल गया और जल करके शुद्ध होकर के कृष्ण लीला में पहले वो पहुंच गई, रात्रि स्थली में प्रीत हो गई। और एक शुद्ध शुद्ध है नित्य सिद्ध राधा जी की कार्य स्वरूप वो मूर्तियां। इनमें एक बात उन्होंने बतलाया, लौकिक संबंध बुद्धि रहेगी, जब तक कि लौकिक सब ये संबंध की भावना में संबंध बुद्धि नहीं रहेगा। ये गौरी वैष्णव का अपना वैशिष्ट्य है जो और किसी भी संप्रदाय में नहीं, क्या लौकिक संबंध की भावना। अर्थात कृष्ण मेरे प्रियतम है, कृष्ण हमारे सखा है, कृष्ण हमारे हमारा पुत्र है, ये लौकिक भाव रहेगा किंतु लौकिक नहीं है, है अलौकिक। कृष्ण भी अलौकिक, भक्त भी अलौकिक, किंतु अलौकिक का ही कृष्ण के प्रति अपने में लौकिक और कृष्ण में लौकिक संबंध की भावना रहेगी, नहीं तो ब्रज प्रेम सिद्ध ही नहीं होगा। ये सनातन गोस्वामी ने विशेष करके बहुत से जगहों में बतलाया, विशेष करके बतलाया उद्धव जी और नारद जी और गोप कुमार द्वारका में जब थे तो वहां पर उद्धव जी और नारद जी दोनों मिलकर के गोप कुमार के संबंध में मंत्रणा कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि देखो इसमें ये भाव है जो हम लोगों में भी नहीं है। अब बिना इस लौकिक संबंध भाव के कृष्ण को उस रूप में नहीं पाया जा रहा है। गौड़ीय वैष्णव के आचार्यों के लक्ष्य काम्य और अभिष्टतम वस्तु अंत में क्या है ब्रजभाव। बिना ब्रजभाव के उनकी कामना आकांक्षा ये सब कभी भी पूर्ण नहीं है, इसलिए वो जैसे तैसे उस भाव तक ब्रजभाव तक पहुंचना चाहते हैं। भगवत अनुभूति से यदि भगवत अनुभूति है तो ब्रह्म ज्ञान अच्छा भी हो जाता है। भगवत माने षड़ैश्वर्यशाली रामचंद्र जी नारायण है, उनकी सेवा की भावना देते हृदय में आएगी तो ब्रह्म भाव जो है मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा यह भाव ठट जाता है ना? और वैसे ही शुद्ध यदि ब्रज का माधुर्य होगा ना तो यह भगवत अनुभूति आच्छादित हो जाएगी। इसको समझना जरा कुछ कठिन होगा, भक्त लोग समझ जाएंगे किंतु सारा फिर से समझ। जैसे प्रदीप आया तो अंधकार को आच्छादित कर दिया प्रकाश, बात ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जैसे दिन है सूर्य अस्त हो गया, रात ने प्रकाश को ढक लिया, ऐसा ही कहते हैं ना, सूर्य नहीं है रात ने अंधकार के द्वारा प्रकाश को ढक दिया, इसी का नाम है रात। ऐसे ही यदि ब्रह्म का भाव है अहम ब्रह्मास्मि, मैं मुक्त हो करके भगवान में लय हो करके मैं ही ब्रह्म बन जाऊंगा, ये कब तक दूर नहीं होगा, जब तक ही भगवान की लीला कथाएं, वो भगवान इतने बड़े दयालु हैं कि अजाम पर कैसी दया, ब्रह्म भाव में ऐसी दया नहीं, वैदेन्द्र को कैसे उन्होंने दया और भक्तों पर कैसे दया करते, बड़ी सर्वश्रज्जशाली है वो, जो कुछ भी होगा वो खत्म, जो हो जो होने का है उसको, नहीं होने का है उसको भी वो घटा सकता है। जब भगवान की नाम रूप गुण लीला का ये जब ज्ञान होगा तो यह ब्रह्म भाव अपने आप ढक जाएगा। जिसको भगवान का सर्वश्रज्ज का ज्ञान है, जैसे नारद ऋषि इत्यादि है, समस्त संबंध अनुसंध कुमार इत्यादि है, ब्रह्मा जी के कृष्ण के प्रति भगवत्ता का भाव है, तब तक ब्रह्म भाव है। यदि किसी को रसिकों से ये सब कथाओं को सुन करके यदि ब्रज का भाव माधुर्य भाव यदि आ गया, अपने आप को भगवत तत्व का ज्ञान अच्छा है। ज्ञाने प्रयासम भूतवासगणं तदेव जीवन्ति समुखरितान् भवति यवर्तान् स्थाने स्थिता कर्मान् मनोहि प्रायशो अजित जीतो विप्रेय। ज्ञान के लिए प्रयास मत करो, ये कृष्ण स्वयं फलवान है, राधा जी स्वयं फलवती है, मत ये सब विचार करो। जो भागवत में कृष्ण की लीला बताया है बस इसका अच्छी तरह से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। बृहद भगवतानंद की कथा हम लोगों ने अब तक जो सुनी उस पर को अच्छी तरह से विचार करो। ऐसे सब करते वो ब्रह्म का जो ज्ञान और जो भागवत का ज्ञान है, जो कृष्ण सर्वश्रज्जशाली है, वो सबके मूल आधार हैं, सर्व कारण कारणम है, अनादि है, सबके आदि हैं, इस भाव को छोड़ो। कृष्ण की लीलाओं का वास्तव कैसे दामोदर है, यशोदा माँ को बंध नहीं हुआ है, ये भगवान है, सखा को चरण करने के लिए जाते हैं, कृष्ण ने कहा अरे जरा भैया को हाथ ले आना, तो मधुमंगल कथा जैसे तुम लाओ, तुम भैया को हाथ लाओ, इसलिए यहाँ माधुर्य के अनुभव से ऐश्वर्य का ज्ञान सब आच्छादित हो जाता है। इस तरह से भाई भगवतामृत एक अपूर्व ग्रंथ है, यहां तक कि बृहद भगवतामृत की भांति एवं सिद्धांत ग्रंथ जगते हरे न आ पड़े, ये महान भाव का था। ऐसा ग्रंथ सिद्धांत का, रस का, विचार का, साधन और साधन का ग्रंथ एक साथ में होना, जैसे जैन धर्म बेजोड़ ग्रंथ है, ऐसे ये ग्रंथ भी बेजोड़ है। इसमें लीला रस भाव सिद्धांत एक प्रकार वर्ण वैष्णव संप्रदाय के जाति तत्वों का इसमें पूर्ण रूप से विवरण है सब। और सनातन गोस्वामी ने दया करके स्वयं टीका भी लिखी, हमारे भावों को कोई गड़बड़ ना करते, किसके क्या मैंने लिखा है मैं खुद ही लिखी, ऐसा नहीं दूसरा कोई लिख दिया और उनका भाव ना। इसलिए कि ऐसे सुसिद्धांत ग्रंथ में और दूसरों का मतात्मक प्रवेश न कर जाए, इसलिए मूल में जो चीज भावों को प्रकट नहीं है उसको उन्होंने टीकाओं के द्वारा अभिव्यक्ति की उसकी। देखो दो की मैंने दूसरे अध्याय के तीसरे दूसरे खंड के तीसरे अध्याय में 168 एक श्लोक है जिनमें सरस एक शब्द है, सरस कभी होगा तो फिर हम लोग इसकी व्याख्या करें। आप बता की व्याख्या दिया सरस शब्द की और व्याख्या का करते हैं कि दीप मैंने केवल मैंने दिग्दर्शन कराया और ऐसे सुंदर सुंदर उसका सुरस सुरस का ऐसी सुंदर सुंदर व्याख्या की रामचंद्र जी में लगाएंगे, नारायण में लगाएंगे, दास में लगाएंगे, हनुमान जी का रस सत्य में लगाएंगे, सुमन सिद्धांत मधुमंगल का रस और उसके बाद में लेंगे जसोदा अनंत माला का रस और उसमें और बढ़ाएंगे इस रस को वो और लगा दिया वो काम होगा और उसमें भी बढ़ा दिया ललिता विशाखा इत्यादि का और फिर उससे भी लगा दिया चंद्रावली का और उससे भी आगे बढ़ा दिया श्रीमती राधिका और सखियों के साथ में कृष्ण की सेवा। ये सूरज ऐसे ऐसे नए नए अब तक तो कहीं भी नहीं प्रकाशित किए गए मुझे और दीनता वस्त्र कहा गया मैंने केवल दिख दर्शन कराया। इसे कि इसलिए कोई केवल वैष्णव संप्रदाय नहीं जो कोई भी साधक है जब इसका थोड़ा सा भी अवलोकन किया तो आपने आप कृष्ण की तरफ भी झुक जाता है। अरे थोड़ा सा बैठो दो मिनट के बाद ही जाना, अभी हम लोग समाप्त करेंगे। यहाँ तक रूप गोस्वामी ने भी इस ग्रंथ के लिए लिखा है श्रीमद् प्रभु पाराम भोजे भागवतामृते, भागवतामृत में हमारे श्रीपाद प्रभुपाद प्रभुपाद अर्थात सनातन गोस्वामी जी ने सब कुछ लिखा है। व्यक्ति कृतां कृतास्ति गुणा अपि भक्ति सिद्धांत माधुरी तैन रूप गोस्वामी ने किया शाखा और उसी के अनुसार में हमने और ग्रंथों का इस प्रकार से इसकी महिमा अपार है। संक्षेप में हम लोगों ने इसका महिमा का वर्णन किया और कल से हम लोग दूसरे ग्रंथ को लेंगे किंतु इस ग्रंथ को छोड़ेंगे नहीं। जैसे भागवत कभी नहीं छूटता है गोस्वामियों के ग्रंथ नहीं छूटते हैं ऐसे इसका बीच में अवलोकन करेंगे फिर जब भी होगा और फिर इसका पाठ करेंगे हम लोग और नए नए रस अनेक नॉन कुतियां नई नई लोग। आज हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, कल हम लोग वृंदावन जाएंगे सवेरे और वहां पर भागवत Thank you.
Oh, yeah.